Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kenopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmananda Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Apyayantu mamangani vakpranas chakshuhu srotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahmo panishadam maham brahma nirakuryam Mama Brahma Nirakaroda Nirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirate Ya Upanishad Sudharama Ste Mayi Santu Te Mayi Santu Om Shanti 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 Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau punah punah Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagine Yomavada Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Om Shanti 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 सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के प्रथम खंड का विचार संपन्न हुआ कल द्वितीय खंड के तीन मंत्रों का भी संक्षेप में हम लोगों ने विचार कर लिया था ये बताया जा रहा है कि ज्ञान अनात्म वस्तुओं का ज्ञाता को होता है तो अपने से भिन्न रूप से होता है अनात्म वस्तु को जानने वाला उसके द्वारा जानी जाने वाली जो अनात्म वस्तुएं हैं वह अलग होती है और उनसे अलग जानने वाला होता है लेकिन एक आत्मवस्तु ऐसी है ब्रह्म ऐसा है कि जिसे विषय के रूप में नहीं जाना जा सकता ब्रह्म का अनात्म वस्तु का ज्ञान तो विषयतया ज्ञान यह इस रूप में ज्ञान ठीक ज्ञान माना जाएगा व्यावहारिक अवस्था में परमात्मक ज्ञान माना जाएगा लेकिन ब्रह्म को यदि कोई अनात्म वस्तु के तरह विषय बना करके और स्वयं विषयी बन करके यानी ज्ञाता बन करके ये मानता है कि ब्रह्म को हम जानते हैं तो शास्त्र की दृष्टि में तथा शास्त्रवेत्ताओं के दृष्टि में वह ब्रह्म का सम्यक ज्ञान नहीं है अनात्म वस्तु का भी इदम के रूप में विषय के रूप में ज्ञान हो रहा है और ब्रह्म का भी यदि अपने से भिन्न विषय के रूप में ही किसी को ज्ञान हो रहा है, तो आचार्य जी ने कहा द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में शिष्य की बुद्धि को विचलित करते हुए कि यदि मन्यसे सुवेदेति, यदि तुम ऐसा मानोगे कि घटादि जैसे मेरे ज्ञान का विषय बन करके और उसका ज्ञाता बन करके मैं घटादि को अच्छी तरह से जानता हूं, ये निश्चय है। ऐसे ही श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत और अन्य देव तद्विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि वाक्यों के द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म को भी मैं घटादि के तरह विषय बना करके अच्छी तरह से जानता हूं। ऐसा यदि तुम मानोगे, मानते हो विषय के रूप में ही ब्रह्म का ज्ञाता अपने आप को समझते हो, तो ब्रह्म का अल्प स्वरूप ही तुम्हें ज्ञात है, ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं माना जाएगा ये, क्योंकि स्वयं को ब्रह्म से भिन्न समझ रहा है और घटादि के तरह अपने ज्ञान का विषय ब्रह्म को समझ रहा है, तो ये ब्रह्म के परिच्छिन्न स्वरूप का ज्ञान है, अयथार्थ स्वरूप का ज्ञान है। इसलिए तो मनुष्य ही क्या देवता भी यदि ब्रह्म को अपने से भिन्न रूप से जानते हैं विषय बना करके, तो आचार्य ने कहा कि उस देवता का ज्ञान भी ब्रह्म के अल्प स्वरूप विषय ही ज्ञान माना जाएगा, ब्रह्म के पूर्ण स्वरूप का उन्हें भी अज्ञान ही है जो ब्रह्म को अपने से भिन्न समझते हैं, कोई भी हो, क्योंकि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप सबकी प्रत्येगात्मा होने से विषय नहीं बनेगा, वो तो आत्मा होने से आत्म रूप से ज्ञान ही ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो सकता है। इसलिए जिसको ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप अपने आत्मा के रूप में अनुभव में नहीं आ रहा है, तो माना जाएगा कि अभी उसे ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का स्वयं के आत्म रूप से विचार करने की आवश्यकता है। यही आचार्य ने कहा कि मीमांस्यम एवते, तुम्हें तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का अभी श्रवण मनन अपेक्षित है, मनन निरिध्यासन अपेक्षित है, और शिष्य ने विचार करके निर्धारण कर लिया और जब विचार करके उसे यथार्थ बोध ब्रह्म का हुआ तो मैं के रूप में हुआ, और ब्रह्म का मैं के रूप में जो अनुभव है उसे शास्त्र की सम्मति तथा आचार्य की सम्मति प्राप्त हो, इस उद्देश्य से आचार्य के पास आकर के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट रूप से कहता है कि नाहम मन्ने सुवेदेति, मैं आपके द्वारा उपदिष्ट परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को घटादि के तरह विषय तया ज्ञात नहीं मानता हूं, का मतलब विदित नहीं समझता हूं, विदित से अतिरिक्त है आपके द्वारा उपदिष्ट स्वरूप, घटादि जैसे विदित होते हैं ज्ञान का विषय बनते हैं ऐसा वो ज्ञान का विषय नहीं बनता, तो अविदित भी नहीं है वो, ये बताने के लिए कहा नो न वेद, मैं नहीं जानता हूं ऐसी बात भी नहीं है, वो तो मेरा स्वरूप ही है, मेरे आत्मा के रूप में मुझे अनुभव में आ रहा है, इसलिए मैं नहीं जानता हूं ये भी नहीं कहता हूं, तो आत्मा के रूप में जानता हूं वेदच। और निश्चयपूर्वक शिष्य कहता है कि जब कभी भी वेदांत प्रतिपाद्य परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का किसी को भी बोध होगा तो जैसे मेरा बोध है, आत्मा के रूप में परमात्मा का अनुभव, यही सम्यक अनुभव माना जाएगा जब कभी भी किसी को होगा। तो इस प्रकार शिष्य जो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप की जिज्ञासा लेकर के तत्ववेत्ता आचार्य के पास गया था और केनेशितम इत्यादि से अपनी जिज्ञासा तत्व विषयक आचार्य के पास रखी थी, द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र तक शिष्य की वह जिज्ञासा पूर्ण हो गई, उसे तत्वबोध हुआ ये बताया। तो गुरु शिष्य के संवाद रूप आख्यायिका से ये प्रतिपादित हुआ कि परमात्मा का परमार्थ स्वरूप सबकी आत्मा है, प्रत्येक आत्मा है। ब्रह्म का प्रत्येक आत्मा के रूप में ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इसे ही स्वयं फिर श्रुति ने भी शिष्य और आचार्य के संवाद से सिद्ध जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप है उसे अपनी सम्मति बताई। यस्यामतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदस। ये जो तृतीय मंत्र है तो इस मंत्र से श्रुति ने स्वयं बताया कि जो ये मानता है कि ब्रह्म का विषयतया ज्ञान नहीं होता है, आत्मरूप से ही ज्ञान होता है। यस्य मतम तस्य मतम का मतलब जिसे विषयतया ब्रह्म ज्ञात नहीं है आत्मा होने से, अपितु आत्मा के रूप में अनुभव में आ रहा है उसे ब्रह्म का सम्यक ज्ञान है। और जो ब्रह्म को घटादि के तरह विषय मानता है और अपने को उसका ज्ञाता मानता है, अर्थात त्रिपुट्यात्मक ज्ञान है। श्रुति कहती है कि मतम यस्य न वेदसः, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, क्योंकि कहते हैं कि जो अज्ञानी है का मतलब अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि करने वाला है, वही अपने आप को ब्रह्म से भिन्न अल्पज्ञ अल्पशक्ति कर्ता भोक्ता समझ करके ब्रह्म को अपना विषय बना करके उपास्य के रूप में जान सकता है, वो तो अल्पज्ञ है। अब इस प्रकार ये जो द्वितीय खंड के तृतीय मंत्र तक शिष्य आचार्य तथा श्रुति ने परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का आत्मा के रूप में ज्ञान ही सम्यक ज्ञान बताया, तो उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है कोई साधक, उसके अंदर जिज्ञासा हुई कि परमात्मा का जो सम्यक ज्ञान है उस ज्ञान का उपाय क्या है, परमात्मा का सम्यक ज्ञान किस उपाय से साधन से प्राप्त होगा। ये एक मध्यम जिज्ञासु के बुद्धि में आकांक्षा हुई सम्यक ज्ञान के साधन को जानने की। तो सम्यक ज्ञान का साधन बताने के लिए ये चतुर्थ मंत्र है द्वितीय खंड का। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम हि विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। इस मंत्र में सम्यक ज्ञान का उपाय साधक को बताया जा रहा है। प्रतिबोध विदितम में एक बोध शब्द है, बोध शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न हुई जो अंतकरण की वृत्ति वृत्ति रूप ज्ञान, ये बोध शब्द का अर्थ है बुद्धि की। यानी ज्ञान दो प्रकार का है, एक वृत्त्यात्मक ज्ञान है जो उत्पन्न होता है चक्षु इंद्रिय का उसके विषय रूप के साथ संबंध होने से, जो रूप का ज्ञान होता है वो ज्ञान है उत्पन्न होने वाला ज्ञान। एक बुद्धि की वृत्ति, उसे यहां बोध शब्द से कहा जा रहा है। ऐसे श्रोत्र इंद्रिय से उसका विषय शब्द के साथ श्रोत्र इंद्रिय का संबंध होने पर जो शब्द विषयक एक बुद्धि की वृत्ति बनती है उसे शब्द ज्ञान कहा जाता है। शब्द का ज्ञान हुआ, वह ज्ञान अंतकरण की वृत्ति रूप, यहां प्रतिबोध विदितम मतम में बोध शब्द का अर्थ है। और पहले बताया था कि जैसे चक्षुरादि इंद्रिया सूक्ष्म भूतों का कार्य होने से जड़ है, ऐसे अंतकरण स्वयं भी जड़ है और पंचीकृत पंच महाभूतों के ही सम्मिलित सत्वगुण से बना हुआ होने के कारण जैसे वह भी जड़ है चक्षुरादि के तरह ही, तो जड़ बुद्धि का जो चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि विषयक एक परिणाम हुआ जिसे रूपादि का ज्ञान कहा जा रहा है, वह रूपादि का ज्ञान भी जड़ बुद्धि का ही परिणाम होने के कारण जड़ माना जाएगा। तो ये बोध शब्द का अर्थ है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला जो बुद्धि में एक तत्तद पदार्थ विषयक ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान बुद्धि की वृत्ति, वह बोध शब्द का अर्थ है। और प्रतिबोध शब्द का अर्थ है समस्त बुद्धि वृत्तियां, जितने भी वृत्त्यात्मक ज्ञान हो रहे हैं वे सभी वृत्त्यात्मक ज्ञान प्रतिबोध विदितम में प्रतिबोध शब्द का अर्थ है। केवल बोध शब्द का तो अर्थ है अंत एक वृत्त्यात्मक ज्ञान, और प्रतिबोध शब्द का अर्थ है समस्त बुद्धिवृत्तियां, समस्त बुद्धिवृत्तियां। और वो जो बुद्धिवृत्ति है व्यवहार अवस्था में हमें प्रकाशक के रूप में भास रही है, अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रही है। तो ये नियम होता है कि अंतकरण के साथ ये चेतन आत्मा का नित्य संबंध है। नित्य संबंध का मतलब उसमें अंतकरण में चेतन का अभिव्यंजन है, अभिव्यक्ति है, चिदाभास है। तो जो भी अंतकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है वो अंतकरण स्वयं भौतिक होने पर भी और बाकी पदार्थ भौतिक होने पर भी एक अंतकरण रूपी भौतिक पदार्थ में अपना व्यक्तिगत सामर्थ्य है कि उसके अधिष्ठान का प्रतिबिंब वो ग्रहण करता है। सभी भूत तथा भौतिक पदार्थों का अधिष्ठान है चेतन आत्मा, आत्मा ही अधिष्ठान है, सब में व्याप्त है। तो शरीर के तरह ही बाकी घटादि पदार्थ भी भौतिक है, लेकिन घटादि पदार्थों में घटादि पदार्थों का अधिष्ठान भूत जो चेतन आत्मा है उसका प्रतिफलन नहीं होता है, और घटादि के तरह ही भौतिक होने पर भी अंतकरण में चेतन आत्मा का प्रतिफलन होता है, प्रतिबिंब होता है, चिदाभास पड़ता है। और ये जो इसलिए हमेशा चित्त की व्याप्ति यानी संबंध अंतकरण के साथ रहेगा, दोनों भौतिक होने पर भी एक में आत्मा अभिव्यक्त हो रही है दूसरे में नहीं हो रही है। तो लोक में भी ऐसे देखा जाता है, कांच भी एक पृथ्वी का ही परिणाम विशेष है, दर्पण पार्थिव ही है और कोयला भी पार्थिव है, लेकिन कोयले में कोयले के सामने कोई व्यक्ति उपस्थित हो खड़ा हो तो उस व्यक्ति का प्रतिबिंब नहीं पड़ता और कांच में पार्थिव होने पर भी पड़ता है। तो ये पृथ्वी के कार्यभूत इन दोनों पदार्थों में अपनी अपनी एक व्यक्तिगत सामर्थ्य भी होती है। कांच में सामर्थ्य है कि अपने सामने जो वस्तु आएगी उसका वो प्रतिबिंब ग्रहण करती है, कोयले में वो सामर्थ्य नहीं है दोनों पार्थिव होने पर भी। ऐसे अंतकरण भौतिक होने पर भी अंतकरण की अपनी विशेषता है कि अंतकरण चेतन आत्मा का जो चिदाभास है, प्रतिफलन है, चेतना है, उसे प्रतिफलित करता है, ग्रहण करता है। तो इसलिए जितने भी चक्षुरादि प्रमाणों से अंतकरण के प्रत्यय यानी वृत्तियां बन रही हैं जितनी भी, उन सब वृत्तियों में भी चेतन आत्मा व्याप्त है, चेतन आत्मा के आभास को ग्रहण करते हुए ही चक्षुरादि इंद्रियों से रूपादि विषय विषयक वृत्ति बनती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी अंतकरण की वृत्तियों में चेतन प्रतिफलित है, चेतन का तादात्म्य है और उसके तादात्म्य के कारण ही अंतकरण वृत्ति स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन सी प्रतीत हो रही है। जैसे लोहा स्वयं जलाता नहीं है लेकिन दाहक जो अग्नि है उसका तादात्म्य यदि लोहे में हो जाए तो गर्म हुआ लोहा वह भी जलाता है। तो लोहे में स्वयं में दाहकत्व न होने पर भी अदाहक लोहे में भी दाहकत्व की जो अनुभूति हो रही है उससे माना जाता है कि दाहक अग्नि का लोहे के साथ तादात्म्य है और दाहक अग्नि के साथ तादात्म्य होने से अन्वय होने से ही लोहे में दाहकत्व धर्म आया है। ऐसे जड़ जो अंतकरण की वृत्तियां हैं चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई वे अपने अपने विषयों का प्रकाश करते हुए देखी जा रही है, अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रही है का मतलब चेतन सी प्रतीत हो रही है। उनमें चैतन्य कहां से आया तो यह माना जाता है कि अंतकरण की सारी जड़ वस्तुएं भी चेतन सी भास रही है तो निश्चित ही उन सारी अंतकरण वृत्तियों में चैतन्य का संपादक जो चेतन है उसका तादात्म्य है, संबंध है। जैसे अदाहक लोहे में दाहकत्व का संपादक अग्नि का संपर्क है, अग्नि के संबंध से ही लोहे में दाहकत्व है, ऐसे प्रत्येक अंतकरण की वृत्ति अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने के कारण चेतन सी प्रतीत हो रही है, चेतनावान प्रतीत हो रही है। उनमें उन अंतकरण वृत्तियों में चेतना कहां से आई तो माना जाता है कि जो सर्वावभासक चेतन आत्मा है उसका संपर्क बोध शब्दित प्रत्येक अंतकरण वृत्ति के साथ है और प्रत्येक अंतकरण वृत्ति के साथ चेतन आत्मा का संसर्ग होने के कारण आत्मा उन वृत्तियों में भी चैतन्य भास रहा है, वो चेतन सी भास रही है, संवेदन के तरह भास रही है। तो ये प्रतिबोध शब्द का अर्थ हुआ कि चेतनावत भासने वाली, चेतन से युक्त भासने वाली सभी अंतकरण की वृत्तियां, और उन जैसे लोहे में दाहकत्व का संपादक अग्नि लोहे से अलग है, उसमें दाहकत्व स्वतः है, स्वयं है अग्नि में, यानी दाहकत्व दो में देखा जा रहा है। दाहकत्व कहते हैं जलाना, तो अग्नि भी जला रहा है और लोहा भी जला रहा है, लेकिन लोहे में दाहकत्व उसका अपना व्यक्तिगत धर्म नहीं है, उसमें दाहकत्व अग्नि के संपर्क से है। और अग्नि में दाहकत्व किसके संपर्क से है? तो अग्नि में दाहकत्व स्वयं है, अग्नि का वो स्वरूप ही है। ऐसे ही जड़ बुद्धि का परिणाम होने के कारण वृत्तियां स्वतः तो जड़ है, जैसे लोहा स्वतः अदाहक है, लेकिन यह चक्षुरादि इंद्रियों से उत्पन्न हुई रूपादि विषयक वृत्तियां चेतनसी भास रही है, जैसे लोहा दाहक के रूप में अनुभव में आ रहा है, अग्नि तादात्म्य अपन लोहा। ऐसे इन वृत्तियों में जो चैतन्य भास रहा है जड़ होते हुए भी, तो लोहे के तरह ये सारी वृत्तियां तो स्वतः जड़ है और उनमें चैतन्य भास रहा है जिस चेतन आत्मा के संबंध से, वह चेतन आत्मा उसमें चैतन्य अग्नि का दाहकत्व जैसे स्वरूप है, स्वतः है, ऐसा उस जिस चेतन के संबंध से जड़ अंतकरण की वृत्तियां भी चेतनसी भास रही हैं। वह चेतन आत्मा उसका चैतन्य स्वरूप है, उसमें चैतन्य स्वतः है, जैसे अग्नि में दाहकत्व स्वतः है, एक ये निश्चित करना है। तो प्रतिबोध शब्द से उन वृत्तियों को लेना है जो स्वयं जड़ होते हुए भी चेतनसी भास रही है, चिद्वत भास रही है, चेतन भास हो रही है। उन जड़ अंतकरण की वृत्तियों में चैतन्य जिसके संपर्क में भास रहा है वह एक चेतन विद्यमान है, वह सभी वृत्तियों से अलग है, सभी वृत्तियों का अवभासक है। ये जिज्ञासा है ना कि आत्मा का अविषयतया ज्ञान कैसे होगा, तो आत्मा के अविषयतया ज्ञान का उपाय बताया जा रहा है। तो तत्व जिज्ञासु को यह विवेचन करना है कि प्रतिबोध शब्दित जिसकी जितनी भी अंतकरण की वृत्तियां हैं, उन सब अंतकरण की वृत्तियों में चैतन्य न होने पर भी, स्वयं वे जड़ होने पर भी चेतनसी भास रही है, तो जिसके संपर्क से उनमें चैतन्य आ गया है वह एक चैतन्य चेतन उनसे अलग है। लोहे में दाहकत्व संपादक अग्नि जैसे लोहे से अलग है, ऐसे सभी अंतकरण की वृत्तियों में चैतन्य का संपादक चेतन सभी अंतकरण वृत्तियों से अलग है, जिसके संपर्क से जड़ अंतकरण वृत्तियां भी चेतन सी प्रतीत हो रही है। वह जो चेतन है, और प्रतिबोध शब्द से अंतकरण की वृत्तियां ली जा रही है और सभी वृत्तियां लेनी है, और सभी वृत्तियों में अब दो विभाग किए जाए कि एक है साधक के अंतकरण की जितनी वृत्तियां, वो भी प्रतिबोध शब्द का अर्थ है, और उन साधक की अपनी अंतकरण की सभी वृत्तियों में चैतन्य, ये विचार करेगा साधक की मेरे अंतकरण की वृत्तियां जड़ अंतकरण का परिणाम होने के कारण जड़ होते हुए भी चेतन आत्मा के जिस चेतन आत्मा के संपर्क से चेतन सी प्रतीत हो रही है, वह आत्मा इन जड़ वृत्तियों में चैतन्य संपादक इनसे अलग है, इनका अवभाषक है, इनको प्रकाशित करने वाला है, इनमें चैतन्य का संपादक है, इनसे अलग है। और वह जो इन सब से सभी मेरी अंतकरण की वृत्तियों में चैतन्य संपादक उन सभी वृत्तियों से अलग चेतन है, वह चेतनमय हूं।